नमस्ते। कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि चैत्य सत्ता के ऊपर एक अंग्रेजी में वार्ता हुई थी, तो उसके बारे में भी हिंदी में भी जानना चाहते थे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो अंग्रेजी की वार्ता थी वो अंग्रेजी की वार्ता है, क्योंकि कोई प्री प्रिपेयर्ड टेक्स्ट नहीं है मेरे पास कि मैं उसके हिसाब से बोलूँ। किंतु सत्य तो वही है, तो उसके विषय में हम लोग थोड़ी सी आज वार्ता करेंगे। तो इसको हम प्रश्नों के रूप में ले लेंगे। प्रश्न नचिकेता का बहुत सुंदर प्रश्न है, क्या कोई चीज़ है हमारे अंदर जो इमॉर्टल है? कुछ कहते हैं, नचिकेता ऐसा प्रश्न करते हैं यम से, कुछ कहते हैं कि मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है। ये प्रश्न को मैं अपने हिसाब से, कुछ कहते नहीं, कुछ है जो एक अमृतत्व का बीज है, वो रहता है, इमॉर्टल है हमारे अंदर, तो इसमें सच क्या है? ऑफकोर्स यम तो पूरा कठोपनिषद उस पर बेस्ड है। पहले प्रश्न करते हैं कि भाई तुम सच में ये जानना चाहते हो, ये देव भी नहीं जानते। बहुत सुंदर उसमें एक कड़ी है कि देवता भी नहीं जानते, तो यहाँ हमको पहली कड़ी मिलती है। पहली कड़ी क्या मिलती है कि देवता भी नहीं जानते। मतलब वो क्यों नहीं जानते हैं देवता? ऐसा क्या रहस्य है मनुष्य के अंदर कि देवता नहीं जानते? वो इसलिए नहीं जानते क्योंकि देवताओं का जो जगत है उसको टाइपल वर्ल्ड कहा गया है श्री अरविंद की परिभाषा में। यानी उन वो देव लोक और दानव लोक और बीच के उनके बहुत सारे ऐसे लोक हैं जो पृथ्वी लोक से अलग हैं, किंतु इन लोकों में विकास का विधान नहीं है, इसलिए वहाँ के जीवों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, क्योंकि प्रगति नहीं, वो जैसे हैं वैसे हैं। अब वो पावरफुल हैं, कई हैं देव दैत्य भी कई ऐसे हैं जो मनुष्यों से कहीं अधिक पावरफुल हैं, लेकिन वो बस वहीं पर हैं जहाँ पर उस लोक के बैंडविड्थ में काम करते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर विकास की संभावना है, इसलिए मनुष्य के अंदर प्रगति की चाह है। देवताओं को अगर प्रगति लेनी है, ये भी हमारे शास्त्रों में, तो उनको मनुष्य का देह धारण करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक ऐसी चिप डाली हुई है, भगवान ने एक ऐसा तत्व डाला है, अपना ही एक अंश, जो अपने आप उसके अंदर एक विकास की ना केवल संभावना, एक चाह है, उत्कंठा है, एक आकांक्षा, एक प्यास है। और वो प्यास कहाँ जाके बुझती है? क्योंकि वो भगवान के ही एक अंश है, भगवान के साथ एक होकर, तभी उसकी वो प्यास बुझती है। और सारी कहानी हमारी इस प्यास के जगने से लेकर उसकी परिपूर्ति तक की कहानी है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। लेकिन एक लंबे समय तक ये चैत्य का भ्रूण या आत्म तत्व, जो भी हम नाम ले लें, इसको हम इस तरह से एक बीज की उपमा देके हम कर सकते हैं कि बीज के अंदर अगर हम देखें तो क्या है। अगर कोई कह सकता है बीज के अंदर पूरा वृक्ष है, गलत होगा, बिल्कुल नहीं गलत होगा, सही है। कोई कहेगा बीज वृक्ष दिखाओ, तो कहेगा नहीं दिखता है, तो कैसे दिखेगा? ये बीज जैसे जैसे बड़ा होगा तो दिखेगा। तो ये उसके कोर में अदृश्य रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में ईश्वर विद्यमान है, कण कण के अंदर वैसे ही ईश्वर अप्रत्यक्ष रूप में, अदृश्य रूप में विद्यमान है। तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि वो बीज के अंदर कोई चीज है जो बीज को ड्राइव कर रही है वृक्ष बनने के लिए। श्री अरविंद एक शब्द यूज करते हैं रियल आइडिया, वो कहाँ से आया है? वो सीधा सुपर माइंड से, यानी जो क्रिएटर की चेतना से ही, क्रिएटर की चेतना का ही वो एस्पेक्ट है जो हर चीज को उसकी नियति की ओर ले जा रहा है। तो वो रियल आइडिया जो पुश कर रहा है, एक ऐसी बात है जो जीव विज्ञानी के वो भी नहीं समझ पाते कि क्यों ऐसा है कि जीन्स का संयोजन क्यों क्लिक हो जाती है, ऑन क्यों ऑफ हो जाती है, उनके अंदर चेंजेस क्यों आते हैं। ये बहुत जटिल विषय है, लेकिन उसके पीछे कोई चीज़ है जो जीन को ड्राइव करती है। तो हम लोग तो कहावत जानते हैं कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, क्योंकि हर चीज़ के अंदर वो चीज़ है जो उसको पुश कर रही है। तो भगवान एक अदृश्य अप्रत्यक्ष रूप में, लेकिन एक शक्ति के रूप में वो विद्यमान है, एक ज्ञान के रूप में विद्यमान है। तो ज्ञान का स्वरूप उनको उस चीज़ को उस दिशा में पुश कर रहा है, धकेल रहा है, या उसको प्रकट करने के लिए बाध्य कर रहा है, और वहीं उनकी शक्ति उसको वो ऊर्जा दे रही है जिसके माध्यम से वो बीज वृक्ष बनेगा। तो ये तो हो गई एक अदृश्य अप्रत्यक्ष ईश्वर जो हर कण में विद्यमान है। फिर दूसरी बात आती है कि बीज का जो सबसे गहरा भाग है, उसको अंग्रेजी में एक तो है एंडोस्पर्म, बाहर का एक और कोट है, एनीवेज उसका सबसे जो अंदर का पार्ट है, वो भाग है जिसके अंदर वो पूरा ब्लूप्रिंट रखा हुआ है वृक्ष का। अब वो ब्लूप्रिंट हम कह सकते हैं कि मटेरियल ब्लूप्रिंट है, उसी तरह हमारे अंदर एक भाग है ईश्वरीय भाग, जिसके अंदर पूरा ब्लूप्रिंट रखा है ईश्वर की पूरी संभावना लेकर, उसको चैत्य स्फुलिंग कहा जाता है, आत्मतत्व। तो आत्मतत्व ऐसे नहीं है कि बस घूम रहा है, आत्मतत्व धीरे 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 धीरे, अगर हम प्रत्येक जीवन काल को एक वर्ष के रूप में ले लें, या अगर पढ़ाई का लें तो एक कक्षा के रूप में ले लें, जो वृक्षों को स्टडी करते हैं बताते हैं कितने वर्षों से वो दबा हुआ था, तो ऐसा हम समझें कि भाई कितने जन्म वो दबा रहता है और अभी उसमें कोई प्रकार की सिहरन नहीं आती है, वो एक बेबी इन द वूम की तरह है, एक लंबे अवधि तक। तो ये ईश उपनिषद बताती है कि वो बार बार वो मृत्यु के द्वार से गुजरता हुआ वो अपने उस स्वरूप को प्राप्त करता है, अविद्या मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु के पार चला जाता है, यानी वो चैतस फुलिंग हमारे अंदर अविनाशी परमात्मा का अंत है, उसका विनाश नहीं हो सकता। तो लेकिन वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो मर गया और फिर जन्म ले लिया, तो ये बड़ी अद्भुत बात है कि कोई चीज है तो फिर वो करता क्या है, वो धीरे धीरे उसके अंदर कुछ हो रही है प्रक्रिया, और वो प्रक्रिया एक लंबे समय तक चलती है। कितने समय तक, तो अगर हम इंडियन ट्रेडिशन का वो ले लें जिसकी बात हो रही थी कुछ समय पहले, 84 लाख योनियां, तो कहा जाता है कि मनुष्य योनि ऐसी है जब ये जागना प्रारंभ करता है। लेकिन अगर हम थोड़े ध्यान से देखें, और माता जी हमको बताती हैं कि मनुष्य ही नहीं, कुछ एक चौपाए ऐसे हैं एंड हायर एनिमल्स जिनके अंदर हम देखते हैं कि चैत्य का एक जागना प्रारंभ हो गया है, और उसका एक छोटा सा प्रमाण भी है। तो अगर हम देखें घोड़े, घोड़ा, हाथी, स्वान, कुत्ता, और कुछ एक हैं जिनके अंदर आप देखेंगे ऐसे भाव, सिंह, जहाँ पर आप लॉयल्टी, जैसे वो चैत्य क्वालिटीज़ क्या होती हैं, फिडेलिटी, लॉयल्टी, ये जो एक कई क्वालिटीज भाव जिसके कारण काइंडनेस, ये चीज़ें, हाँ काइंडनेस, और जैसे स्वान के अंदर बहुत अधिक ये होता है फेथफुलनेस, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये हम कुछ पशुओं में देखते हैं। तो मनुष्य में भी कुछ, बच्चों में ये चीज़ देखने को मिलती है, एक चैत्य का एक, जैसे अगर हम देखें छोटे बच्चे को 11-12 साल के पहले, एडोलेसेंस में एंटर करने के पहले, तो वो या तो एक देह जो प्राणवंत है और उस प्राणवंत देह के पीछे एक चैत्य सत्ता है, तो चूंकि प्राण के अन्य हिस्से नहीं आए हैं, मन नहीं आया है, तो वो बिल्कुल स्पष्ट दिखती है। तो उनके अंदर कई ऐसी चीज़ें, बच्चे झूठ बोलना स्वाभाविक रूप से नहीं जानते हैं, जैसी वो एडोलेसेंस आती है तो ये सब खेल शुरू हो जाता है। तो पशुओं में, हायर एनिमल्स में प्रारंभ हो जाता है, और मुझे लगता है यही शायद एक कारण रहा है कि एक एक्सट्रीम तो यह है कि किसी जीव की हत्या ना करो क्योंकि सबके अंदर भगवान है, लेकिन एक दूसरी भी एक धारा रही है भारतवर्ष में कि हायर जो जीव है, गाय बहुत प्रोमिनेंटली, उसके अंदर देखिए ममत्व कैसा है। अगर आप लोग अब बताते भी हैं कि गाय को थेरेप्यूटिक होती है, गाय को केवल एम्ब्रेस करना, तो ये जो ये ममत्व का जो भाव है, ये सारी चीज़ें हायर एनिमल्स में आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि चैतस फुलिंग जाग रहा है, तो ये हायर एनिमल्स में जागना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन फिर भी वो बहुत अधिक वो अंधकार के घेरे में ही है, तो वो जागता तो है लेकिन एक्टिवली अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। क्यों नहीं? क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो यहाँ हमको दो चीज़ें समझनी है, एक जो जो अंदर में जो चैत्य स्फुलिंग है या अंतरात्मा है, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन कैसे हम समझे कि बीच के अंदर कुछ हो रही है, प्रकंपन हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन ना फूल निकल रहे हैं, ना फल निकल रहे हैं, ना वृक्ष की जो डालियां हैं वो आ रही हैं, पत्ते नहीं हैं, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन है जिनके द्वारा बीच के अंदर का सौंदर्य, उसके अंदर जो अभिप्साय, ये सब प्रकट होगा। तो ये एक हायर एनिमल्स में, और ये संभव है डॉल्फिन्स में, जो मैमल्स हैं जिनको हम मैमल्स कहते हैं, तो उनके अंदर ये चीज़ दिखाई देती, व्हेल भी मैमल का एक स्वरूप ही है, तो उनके अंदर ये चैत्य का एक जागना प्रारंभ दिखाई देता है। उसके बाद जब मानव जन्म होता है, तो ये एक लंबे समय तक मानव जन्म और पशु जन्म बड़े, मतलब जिसको कहते हैं ना, इंटरफेस ऐसी है कि अब देखते हैं हम लोग, आश्रम है उसके बाहर में बहुत से लोग, कुछ लोग हैं जो अंदर जा रहे हैं कि भाई हमको दर्शन करने, कुछ हैं जो बाहर सेल्फी लेने में व्यस्त हैं। तो इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड, या किसी के कोई जजमेंटल नहीं होना है, लेकिन ये कि एक लंबे समय तक मानव जीवन में भी वो एक लगभग पशु की चेतना से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि चेतना का जो उन्नयन है, चेतना का जो प्रकटन है, वो धीरे धीरे होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चेतना का स्तर बढ़ेगा वैसे ही देह का और मन का और प्राण को भी तैयार होना है। अगर नहीं तैयार होंगे तो जैसे एक दूसरी क्लास के बच्चे को या किंडरगार्टन में आपने उसको पीएचडी लेवल का ज्ञान दे दिया तो वो एक अलग प्रकार का असंतुलन हो जाएगा। तो एक लंबे समय तक अब वो 2 जन्म हो सकते हैं, 3 जन्म हो सकते हैं, प्रारंभिक जन्म जैसे एस्किमो का हुआ या बहुत प्रिमिटिव उसमें हुआ, तो वो डेवलप नहीं होता है। वो होता है सबके अंदर अंतरात्मा, लेकिन वो एक दबी हुई है। उसी समय हम लोग देखते हैं, एक पहचान होती है कि अंतरात्मा दबी हुई है। व्यक्ति बहुत क्रूर होता है, बहुत स्वार्थी होता है, वो किसी और के बारे में कुछ सोच नहीं सकता है, वो स्वयं को भी पीड़ा देगा, दूसरों को भी पीड़ा देगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे चैत्य डेवलप होता है तो उसके अंदर से प्रेम, ये कुछ लक्षण होते हैं, प्रेम की चाह या प्रेम प्रकट होने लगता है, सत्य के प्रति उसका आकर्षण होने लगता है, शुभ गुड सत्यम शिवम सुंदरम इसके प्रति वो आकर्षित होने लगता है हर चीज के अंदर। तो अब नेक्स्ट लेवल क्या आता है ये अंतरात्मा के विकास का, जब वो धीरे धीरे जागने लगती है और ये जो अंदर में बीच का जो सबसे अंदरूनी भाग है अब ये प्रभाव डालता है किस पर, जो एंडोप्लाज्म जो उसका बाहरी चीज है। अब बाहरी जो लेयर है वही फिर डेवलप करेगा वृक्ष के रूप में। तो अब देखिए 2 चीजें हैं, एक है एकदम अंदर का भाग, एक है बीच का भाग, और वो कैसे डेवलप करेगा, उसको बांधा किस चीज ने, बाहरी क्रस्ट जिसको कहते हैं बीच का सबसे बाहरी भाग। अब ये जो आउटर क्रस्ट है इसको जब ये तैयार हो गया तो ये क्या करता है, अंदर से जोर मारता है। तो जोर मारता है तो ये बाहर की जो क्रस्ट है वो धरती में दबी दबी, अब तक वो धरती में दबा है लेकिन वो प्रेशर के कारण वो धीरे धीरे गलनी शुरू हो जाती है, और गलनी शुरू होती है तो एक और नीचे रूट्स जाते हैं और दूसरी ओर ऊपर में डेवलपमेंट शुरू होता है। तो हम लोगों की भी जो आउटर मोस्ट क्रस्ट है जिसको हम समझते हैं हम हैं, वो ईगो सेल्फ है। ईगो सेल्फ और अहंकार में एक अंतर है। अहम भाव, अहम भाव है पृथकत्व का भाव है, मैं अलग हूँ ये अलग है, उससे क्या चीज़ जन्म लेती है, अज्ञान। तो अज्ञान कैसे ऑपरेट करता है, जब हम अहम भाव में रहते हैं कामनाओं के द्वारा, ये उसके पास है मेरे पास होनी चाहिए, ये मेरे पास नहीं है उसके पास भी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से अहम भाव ऑपरेट करता है जिसमें नाना प्रकार के दुर्गुण जलसी इत्यादि ये सब आते हैं। फिर यही अहम भाव जब डेवलप होता है तो एक सात्विक भाव में प्रवेश करता है, मेरे पास ये चीज़ें अच्छी है दूसरे के पास भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये अहम भाव धीरे धीरे गलने लगता है। फिर एक टाइम आता है जब एक और बाहर का अहम भाव गल रहा है और दूसरी ओर अंदर चैत्य सत्ता कई जन्मों से गुजर के डेवलप हो रही है, और चैत्य सत्ता और बाहर की जो पर्सनैलिटी आउटर ईगो पर्सनैलिटी दोनों के बीच में इनर बीइंग जिसको हम लोगों ने कहा कि बीच का बीच वाला भाग एंडोप्लाज्म, अब ये क्या होता है, ये डेवलप होना शुरू होता है। अब इसको शेरविंद ने कहा इट इज़ द इनर मैन, जो रियल व्यक्ति होता है वो अंदर होता है, बाहर नहीं, वो इनर बीइंग है। तो वो जब डेवलप होना शुरू होता है तो उसका प्रेशर बढ़ता है, ईगो भाव धीरे धीरे, जो पहले प्रोटेक्ट ईगो भाव क्यों दिया है, जैसे बीच का जो बाहरी क्रस्ट वो इसलिए होता है क्योंकि या तो बहुत तेज धूप में जल जाएगा या कुछ वो खा लेंगे आकर्षित होके, तो ईगो भाव भी हमको डिफेंड करता है विश्व विराट से, विश्व सत्ताओं से। तो प्रारंभिक जन्मों में ईगो भाव बहुत स्ट्रांग होता है और वो जरूरी होता है, नहीं तो वो संसार की शक्तियाँ खा लेंगी। तो ईगो भाव क्या कहता है, नहीं मैं तो ऐसे करूँगा, स्टबनली रिफ्यूज करता है, तो इसमें वो सुरक्षित भी रहता है क्योंकि अभी उसके पास ज्ञान नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब ये ईगो भाव कब मेल्ट होता है, जब अंदर में ज्ञान का उदय होना शुरू होता है, तब व्यक्ति चुनाव ईगो के आधार पर नहीं करता, अहम के आधार पर, तब वो चुनाव करता है इस पर कि क्या चीज़ उचित है। अब वो जानने लगता है कि मेरी दिशा क्या होनी चाहिए। तो जैसे जैसे वो अंदर में आत्म विकास होगा वैसे वैसे वो अहंकार का जो अहम भाव जिसकी ज़रूरत थी एक समय, वो धीरे धीरे गलने लगती है। और अब जो बीज के अंदर वृक्ष है यानी चैत्य सत्ता के अंदर जो दिव्य संभावना है वो प्रकट होने लगती है। प्रकट किसके आधार पर होगी, मैटर के आधार पर। तो वो शरीर के ही अंदर ये सब हो रहा है, तो शरीर त्याग के नहीं प्रकट होता, ये बड़ी अद्भुत बात है जड़ तत्व की, और वो एक अलग कहानी है, उसकी बात कभी और होगी कि जड़ क्या वास्तव में जड़ है या जड़ के अंदर चेतन छिपा है, पर वो कभी और। तो धीरे धीरे वो शरीर के ही आधार से, कोई चीज़ है शरीर में जो बड़ी अद्भुत है ह्यूमन बॉडी में और टेरेस्ट्रियल मैटर में, कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में चैत्य सत्ता का पोषण करती है। कैसे पोषण करती है, दुनिया भर के अनुभव आते हैं और इस जड़ तत्व के अंदर सारे तत्व मिले हुए हैं, इसीलिए कहा गया है कि पिंड के अंदर ब्रह्मांड है। तो जो टाइपल वर्ल्ड है जो कहा जाए देवों के जगत और दैत्यों की जगत, वहां तो एक रस जीवन है। अब जो इंद्र भगवान का स्वर्ग है, असल स्वर्ग की बात नहीं हो रही है, वहां अब एक जैसा म्यूजिक चल रहा है, एक जैसी चीजें हैं, विधाएं हो रही हैं, लेकिन अब ये धरती है, इसमें बहुत सारी विधाएं एक साथ संभावनाओं के रूप में प्रकट होती हैं। तो अब चैत्य के पास बहुत संभावनाओं का एक अपार भंडार खुला हुआ है, ये जड़ तत्व की एक विशेषता है। इसलिए आप देखिए, वैसे तो लोग कहते हैं मोक्षवादी कि हमको मुक्ति 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 की बात, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जड़ तत्व इस शरीर के बिना आप साधना नहीं कर सकते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही माध्यम है। तो शरीर क्यों ऐसा माध्यम बना है? क्योंकि जड़ तत्व के अंदर कोई चीज है जो एक ओर तो एक रैपिड इवोल्यूशन रोकती है, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, वहीं दूसरी ओर उसके अंदर छिपी हुई संभावना है जिनसे वो पोषित करती है। दोनों चीजें हैं। रैपिड इवोल्यूशन कैसे क्यों रोकती है और वो क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर बहुत शीघ्र अगर अंतरात्मा डेवलप होने लगे तो उसके इंस्ट्रूमेंट आधे अधूरे रह जाएंगे और वो अपने को अभिव्यक्त करने की जगह सीधा भज गोविंदम चल अपने घर जो ससुराल में, तो वो प्रयोजन नहीं है। तो दोनों का समन्वय चाहिए। एक और धीरे धीरे हमारी जो संभावनाएं, मन का विकास, हृदय का विकास। इसीलिए अगर मन बहुत नैरो है, चैत्य आपका डेवलप्ड है, भगवान की ओर मुड़ा है, तो भक्ति भी बड़ी संकीर्ण हो जाती है और संकीर्ण भक्ति बहुत सहजता से अहम भाव में चली जाती है। तो वही हम देखते हैं रावण के साथ, और वो भी एक पतन का कारण होती है। और अगर हृदय डेवलप नहीं है तो मन के अंदर वो चैत्य डेवलप हो रहा है, भगवान की तरफ मुड़ रहा है, लेकिन हृदय बहुत संकीर्ण है, तो वो क्या करता है, सेक्ट बना लेता है। ये मेरा वाला भगवान है, ये सबसे बड़ा है, सबसे बढ़िया है, तुम्हारा भल वाला भगवान अच्छा नहीं, क्योंकि वो एक संकीर्ण ग्रुप में स्वयं को सीमित कर देता है। उसी तरह अगर प्राण भी स्ट्रांग नहीं है और चैत्य डेवलप हो रहा है तो वो टूट जाता है, प्राण बिखर जाता है। और उसी प्रकार से अगर शरीर स्ट्रांग नहीं है तो चैत्य डेवलप हो रहा है तो उसका जो तेज है, प्रकाश है, प्रताप है, शरीर उसको सहन नहीं कर पाता है और वो उसमें भी ब्रेकडाउन की संभावना है। तो ये प्रकृति ये खेल को लंबे समय तक बहुत टाइम लेती है, धीमी आंच पर पकने वाले लोग हैं हम लोग तो, लेकिन एक समय आता है जब चैत्य सत्ता तैयार हो रही है, तब वो चैत्य स्फुलिंग, चैत्य सत्ता, ये दो अलग वर्ड है। चैत्य स्फुलिंग मतलब बीज के अंदर वृक्ष की संभावना, और चैत्य सत्ता, अब वो बीज अपनी परिसमाप्ति पर चला गया है, वृक्ष निकला है, अब वृक्ष के अंदर ऋतुओं के साथ परिवर्तन होंगे, लेकिन अब बीज ने अपना काम कर दिया है। तो चैत्य सत्ता जब पूरी तरह विकसित हो जाती है, उसके अंदर जो जो दिव्य संभावनाएं थी वो प्रकट हो जाती है। अब वो क्या है, केवल वो इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट होना है या फिर वो बाहर जा सकती है, वो एक दूसरी बात है, किंतु चैत्य सत्ता, चैत्य स्फुलिंग का संपूर्ण विकास चैत्य सत्ता है। चैत्य स्फुलिंग इज इक्विवेलेंट टू अंतरात्मा, सबके अंदर वो जो आत्म तत्व है। तो जीवात्मा क्या है? अब ये यहां टर्मिनोलॉजी की यही प्रॉब्लम होती है। जीवात्मा वही है, ईश्वर का अंश है, लेकिन इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। इसको द्वासुपर्णा के रूप में बताया गया है उपनिषदों में, श्वेताश्वतर में, एक जो ऊपर बैठा है, एक जो नीचे है। अब हम बीज के उदाहरण में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक और सर्वव्यापी ईश्वर है, लेकिन वो प्रत्येक बीज को अपने हिसाब से ले जा रहा है, जिसकी बात हुई। तो है तो वो सर्व सक्षम, लेकिन वो कॉस्मिक ऑर्डर ऐसा है कि एक रियल आइडिया जिसकी बात हुई, वो ब्लूप्रिंट, उस बीज का ब्लूप्रिंट उस पर ऑपरेट करेगा। तो उसी प्रकार से प्रत्येक चैत्य सत्ता यूनिक भी है, वो हमारी ट्रू इंडिविजुअलिटी है। एक और वो भगवान से जुड़ी है सर्वव्यापी से, तो वो जानती है कि सबके अंदर भगवान है, लेकिन प्रत्येक चैत्य सत्ता अपने ढंग से, अपने उसके अंदर जो चीज छिपी है, ईश्वर का बीज विद्यमान है, वो प्रकट करेगी। तो वो अब उसके अंदर ये ब्लूप्रिंट कहां पर छिपा हुआ है? वो ब्लूप्रिंट जीवात्मा के पास रियल आइडिया सुपर माइंड से, सुपर माइंड के अंदर ये अपने ब्लूप्रिंट के साथ देश काल की सीमा के परे, वो भगवान के पास, वो जीवात्मा का वह स्वरूप है जहां वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में, जिस रूप में उसको जाना है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग फुल प्रूफ टेक्निक है, मेथड है भगवान का, क्योंकि वो वहां पर है, वो खींच रहा है आपको। आप कितनी भी कोशिश करो, अल्टीमेटली आप उसी दिशा में जाओगे, क्योंकि वो जीवात्मा का जो ओरिजिनल, जो उसको बनना है, वो ब्लूप्रिंट लेके बैठा हुआ है वहां। शेयरविंद जो टर्मिनोलॉजी इसको देते हैं वो क्या है, सेंट्रल बीइंग। ये टर्मिनोलॉजी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप हिंदी में केंद्रीय सत्ता, वो ट्रांसलेशन है, परंतु वही हमारा सच्चा केंद्र है जो देश काल के परे है, किंतु उसी जीवात्मा का एक अंश हमारे अंदर चैत्य स्फुलिंग या अंतरात्मा के रूप में है। तो अब हम ऐसे देखें कि जीवात्मा के दो एस्पेक्ट हैं, एक जो मृत्यु के द्वार से निकलता है, जन्म लेता है, लेकिन प्रत्येक मृत्यु जन्म में वो थोड़ा 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 जाग रहा है। जैसे एक बच्चा है, पहले भ्रूण के अंदर डेवलप हो रहा है, फिर बाहर आता है तो भी एक लंबे समय तक वो डेवलप हो रहा है, तो वैसे वो धीरे 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 चैत्य स्फुलिंग जाग रहा है। उसकी क्या दिशा होगी, एक लेवल पर पूर्व निर्धारित है और दूसरे लेवल पर उसको एडवेंचर ऑफ टाइम एंड स्पेस से गुजरना है। एक लेवल पर हम कह सकते हैं कि बीज के अंदर ही तो वृक्ष निकलेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बीज और वृक्ष के बीच में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकती है कि भाई बकरी खा गई, अब वो बीज तो गड़ा है, वो निकलेगा फिर से, सूखा पड़ गया, एक लंबे समय तक पड़ा रहा, लेकिन चैत्य का बीज तो अविनाशी है, वो खत्म नहीं होता है, लेकिन वो एडवेंचर है और ये एडवेंचर के पीछे भी एक अपनी कहानी है, पर उसको अभी हम लोग रहने दें। तो इस प्रकार से द्वार से, मृत्यु के द्वार से गुजरते हुए, तो मृत्यु कोई डरने वाली चीज नहीं है, वो एक विकास का विधान है। मृत्यु कोई वरण करने वाली भी चीज भी नहीं है, क्योंकि अच्छा हो कि अगर ये विकास बिना मृत्यु के द्वार से गुजरे हुए आए, लेकिन उससे गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि चैत स्फुलिंग तो डेवलप होता है, लेकिन हमारा वो कॉन्स्टेंट प्रोग्रेस करता है। आपके बुढ़ापे में भी यदि कोई चीज नहीं समाप्त होती है, वो है अगर एस्पिरेशन जाग जाए, आप कितने भी हो गए हो वो एस्पिरेशन चलती रहेगी। उसी प्रकार से मन के अंदर भी ये संभावना है कि मन विकसित होता रहे। आजकल ये हम देखते हैं कि बूढ़े बूढ़े लोग व्हाट्सएप सीख रहे हैं, बूढ़ा इज नॉट ए गुड वर्ड, लेकिन मन विकसित हो सकता है, नई चीजें वो जान रहे हैं, लेकिन जो हमारे हृदय और प्राण तत्व है इसके लिए विस्तार लाना बड़ा मुश्किल होता है, और शरीर के लिए भी, इसलिए मृत्यु के द्वार से जाना पड़ता है। मेनली शरीर, शरीर उस चैत्य की विकास को और मन की गति को नहीं फॉलो कर पाते हैं। तो इट्स लाइक कि आप जैसे जैसे, आप समझिए अभी शरीर को एक वाहन के रूप में ले लीजिए, और चैत्य वो है अंतरात्मा जो बैठी हुई है, मन जो बुद्धि है जो है बेस्ट पार्ट है, वो ड्राइवर है। तो अब वो जो चैत्य, वो कहता है नहीं अब तो मुझे हिमालय पर्वत चढ़ना है, अब वो गाड़ी चला रहा है वो जो ड्राइवर, अब वो कोशिश करता है, फिर कहता है भैया ये हिमालय के लिए नहीं बनी है, तो क्या करेंगे आप, गाड़ी को छोड़ेंगे, फिर आप ऐसी गाड़ी लेंगे जो आपको लेह लद्दाख की ट्रेन से भी चली जाए। ऐसी गाड़ियाँ होती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई एम नॉट इनटू एडवर्टाइजिंग, पर वो फिर अगर कोई बोले नहीं हिमालय तक तो हम आ गए, अब हमको ना एकदम वो मुझे यहाँ से सूर्य दिख रहा है वहाँ जाना है, तो आप नया यान लेंगे। तो शरीर एक यान है, जैसे जैसे आपकी अभिप्सा बढ़ती है वैसे वैसे आपको नए यान की जरूरत होती है। कई बार अभिप्सा बड़ी प्रबल होती है और शरीर एकदम साथ नहीं देता है, तो उसमें भी कभी कभी कहते हैं ना, गॉड जिनको बहुत प्यार करता है उनको जल्दी बुला लेता है। ये नहीं कि हर अर्ली इज लाइक दैट, लेकिन ये भी एक संभावना जुड़ी होती है। तो ये खेल इसीलिए बाहर से देख के नहीं समझ आता है। शेरविन ने इस पर एक पत्र लिखा है, जब एक बहुत सुंदर उमा बोस नाम की गायिका थी, 21 साल की उम्र में मर गई, और दिलीप कुमार राय ने प्रश्न किया कि वाई डिड सच ए फाइन फ्लावर फेड अवे सो सून, तो बताते हैं कि वो सात्विक विकास इतना चरम सीमा पर पहुंच गया था कि अब इस शरीर में ये और नहीं संभव था। फिर उसका रिवर्स भी होता है, ऐसा भी नहीं है, कई बार होता है कि एक, तो हम बाहरी आयु से अंदर की बात नहीं जान सकते, क्योंकि चैत्य को क्या है, वो नया शरीर लेके आएगा। तो ना हमको मृत्यु की कामना करनी चाहिए, ना हमको मृत्यु से भयभीत होना चाहिए। ये चैत्य सत्ता के स्पर्श होते ही ये अपने आप अंदर में हमारे, क्या कहा जाए, DNA में आ जाता है कि हम मृत्यु कुछ नहीं है। इट कम्स सेंस ऑफ सीक्रेट इमॉर्टैलिटी। तो अब ये चैत्य सत्ता विकसित होती हुई कई जन्मों में, फिर धीरे धीरे, अब देखिए ये खेल दो लेवल पे चलता है। अब प्रेम चैत्य सत्ता के अंदर जागा, वो प्रेम किसके लिए, ईश्वर के लिए और ईश्वरीय तत्व के लिए। मतलब वो संसार में कैसे प्रकट होगा, जब चैत्य सत्ता पूरी डेवलप हो गई, वो ऐसे प्रकट होगा कि जहां भी वो ईश्वरीय तत्व को देखेगा। इसलिए इसको कहा गया है कि इट इज द ईटर ऑफ द हनी इन द लोटस, आपका शत्रु भी है लेकिन उसके अंदर वो देखेगा कि एक बड़ी सुंदर कोई चीज है, जेनरोसिटी है मान लीजिए, तो आप उसको अप्रिशिएट करोगे. क्यों? क्योंकि वो चैत्य सत्ता ईश्वरीय तत्व से प्रेम करती है. ये चैत्य सत्ता का ये तरीका है. और अल्टीमेटली तो वो ईश्वर से सर्वव्यापी पुरुषोत्तम के पास और आप और अंत में वो क्या चाहती है, वो पुरुषोत्तम का यंत्र बनना, चैनल बनना. ये उसके अंदर ये इनबिल्ट है क्योंकि वो भगवान को जानती है. लेकिन इस डिग्री ऑफ डेवलपमेंट में बहुत समय लगता है, इस विकास में. तो पहले क्या होता है, अब प्रेम अंदर में चैत्य का प्रेम डेवलप हो रहा है लेकिन बाहरी इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं है, हृदय संकीर्ण है और अभी ईगो की पट्टी पड़ी हुई है. तो कैसे एक्सप्रेस करती है, अटैचमेंट किसके साथ, परिवार, ये मेरे परिवार का है. तो उस अटैचमेंट के साथ क्या होता है, सुख दुख ये सब होते हैं. तो अब ऐसे हम देखें तो कई बार लगता है पता नहीं जो परिवार में बहुत ज़्यादा जुड़े हैं वो ज़्यादा भाग्यशाली या जो मतलब ये अंदर की गति बड़ी अलग होती है बाहर की गति से. क्योंकि जो बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, रमे हुए हैं, तो वो तो देखा जाए तो वो तो फंसे हुए हैं एक लेवल पर. लेकिन उस लेवल पर अटैचमेंट के द्वारा ही वो धीरे धीरे अपने आप को, अब वो अटैचमेंट जो ब्लाइंड अटैचमेंट होता है विकास के साथ धीरे धीरे सेंस ऑफ ड्यूटी उससे बदलता है कि नहीं ब्लाइंड अटैचमेंट नहीं है. अच्छा, ये नहीं कि आप गलत कह रहे हो, गलत कर रहे हो तो मैं चुपचाप सुन लूँ. तो आप देखें कि विद्रोह, ये सारी स्टेजेस से गुजरते हैं. उसके बाद में ये दोनों चीज़ें जब चली जाती हैं तो शुद्ध प्रेम जब डेवलप होता है तो हम हर व्यक्ति के अंदर उसका जो बेस्ट पार्ट है उसको प्यार करते हैं. माता जी एक जगह कहती हैं कि अवर बेस्ट फ्रेंड इज ही हु लव्स अस इन द बेस्ट पार्ट बट डज नॉट वांट अस टू बी अदरवाइज. हर किसी के अंदर एक सुंदर भाग है, हम उसको देखते हैं, उससे प्यार करते हैं. अब कोई जरूरी नहीं कि वो देखे, अब भाई उसकी डेवलपमेंट जितनी है उसी देखेगा, लेकिन आप देखने लगते हो तो एक पूरी दृष्टि बदलती है. फिर आप और डेवलपमेंट होता है तो सबके अंदर ईश्वर दिखाई देने लगते हैं और ईश्वर का खेल समझ आता है. इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर दिखाई दे रहे हैं तो आइए बैठिए, नहीं, आप रित चित के अनुसार ये भी देखते हो कि हर किसी के अंदर ईश्वरीय सत्ता की क्या मांग है, किस अनुभवों से उसको गुजरना है. तो वो एक बहुत बड़े व्यापक स्तर पर कहानी चलती है. और ऐसे डेवलप होते हुए जब चैत्य सत्ता पूरी डेवलप हो जाती है तब ये होता है कि भाई वो वृक्ष तो पूरा हो गया, अब कुछ वृक्ष होते हैं कुछ समय तक फल फूल देते हैं और फिर सूख जाते हैं. लेकिन कोई कोई वृक्ष ऐसे भी होते हैं जो सदा सर्वदा वो फलते फूलते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं ना पेरिनियल, वो सीजन के परे चले जाते हैं. पेरिनियल नहीं, एक टर्म पेरिनियल शायद एक शब्द है. तो अब वहाँ पे ये हमारे पास चॉइस आती है कि कुछ समय के लिए हम फल फूल के चले जाएं, सूख जाएं, मुक्ति, थोड़ा बहुत फल फूल देंगे जो भी हमारे अंदर संभावना थी, छाया दे सकते हैं, हो सकता है फल फूल ना दे, या कुछ समय, और ये भी संभव है कि उस वृक्ष के अंदर से कुछ और लोग कुछ ले जाएं और वृक्ष पैदा हों, ये सारी संभावना है एक डेवलप्ड साइकिक बीइंग के साथ. किंतु एक संभावना और है कि हम पेरिनियली ये सब तो करें ही लेकिन सदैव फलते फूलते रहें और इस संसार में बार बार आए और इसको भगवान के फल फूल, उनकी सुगंध से, उनकी छाया से, उसका हम यंत्र माध्यम बने. तो ये है चैत्य सत्ता के पूरे विकास की कहानी. इस विकास को क्या हम बढ़ा सकते हैं, निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं. कैसे विकास को हम बढ़ा सकते हैं, जैसे मन को मन का खाना चाहिए. क्या मन का खाना है, नाना प्रकार के ज्ञानवर्धक पुस्तकें. हृदय को हृदय का खाना चाहिए. क्या हृदय का भोजन है, प्रेम. और कई बार वो मिक्सचर आता है हर प्रेम के साथ, वो ईर्ष्या ना जाने क्या क्या घृणा मिली होती है, तो फॉर्मूला फूड आता है, बेस्ट क्वालिटी का नहीं होता है. लेकिन अब क्या, अब जिसका हृदय के अंदर अभी प्रेम जगह ही नहीं है वो कहीं से भी प्रेम ढूंढ रहा है. और प्राण को क्या चाहिए, प्राण को चाहिए प्राण का खाना, जो इंटरेस्ट डिज़ायर इसके थ्रू. और शुद्ध जो भोजन है प्राण का वो है आनंद, वो तो मिलता नहीं आसानी से, ईश्वर की शक्ति. तो तब तक वो इन्हीं चीज़ों को भोजन करके थोड़ा थोड़ा अपनी काम चलाओ कि भाई अब जैसे आदमी अब घर में नहीं रहता है तो मैं इसके खाने से काम चलाता है, ढाबे में खाना खाता है, स्विगी से लेता है. तो वैसे ही वो प्रारंभिक जीवनों में ऐसे ही है. फिर शरीर का क्या भोजन है, शरीर का भोजन है आहार जो हम लोग बाहर से कर लेते हैं. तो उसी प्रकार से ये पार्ट्स को तो हम देखते हैं, अधिकतर लोग तो केवल शरीर और प्राण, निम्न प्राण को भोजन देते हैं, वो हृदय को भी ठीक से पोषित नहीं करते और मन को तो करते नहीं है और चैत्य की तो बात अलग है। तो मन को भी हमको पोषित करना होता है, इसीलिए स्क्रिप्चरल रीडिंग, रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स भारतवर्ष में ये स्वाध्याय एक पार्ट था योग का, डिसिप्लिन का ये भाग है। क्यों? मन नहीं अगर डेवलप्ड होगा और आपकी चैत्य डेवलप्ड होने लगेगी तो इंस्ट्रूमेंट जो मेन, तो मनुष्य में तो अभी मन ही नेता है, मन प्राण शरीर नेता, और अगर हम स्क्रिप्चर के थ्रू नहीं भी तो रीजन का डेवलपमेंट, मेंटल विल, मेंटल कंट्रोल, इसका भी एक अपना स्थान है। मनुष्य मनुष्य तब बनता है जो अपने अंदर के पशु को वो मेंटल विल से कंट्रोल करता है। तो ये एक मन का डेवलपमेंट। लेकिन चैत्य को भोजन क्या चाहिए? चैत्य को भोजन, तो अब इसी में एक प्रकार के स्क्रिप्चर होते हैं जो चैत्य को भोजन देते हैं। अब जैसे रामचरितमानस है, इसको आप पढ़ें। श्री अरविंद तो हर लेवल का भोजन देते थे चैत्य के बाद। श्री अरविंद की सारी पुस्तकें, खासकर प्रेयर्स एंड मेडिटेशन, सावित्री है, भगवान का स्मरण मनन जप, ये सारी चीजें चैत्य का भोजन है। भगवान का दर्शन कहीं भी जा करके उनके सामने, या ऐसे स्थान है तीर्थ यात्रा, ये सारी चीजें इनबिल्ट थी भारत के सनातन धर्म में, क्योंकि वो जानते थे कि चैत्य को आपने अगर नहीं डेवलप किया और मन आपका डेवलप हो गया, क्योंकि वो तो एक अलग लेवल पर विकास चल रहा है, तो आप वास्तव में ए ब्रिलियंट माइंड विद ए अनडेवलप्ड साइकिक इज बाय डेफिनेशन एन असुरा। तो वो माइंड तो डेवलप हो गया, बहुत रैशनली डेवलप हो गया, एनालिटिकल हो गया, लेकिन चैत्य डेवलप नहीं हुआ, तो वो संसार में महाविनाश का कारण बनेगा। तो भारतवर्ष की अगर आप देखें सनातन धर्म की जो जीवन शैली थी उसमें ये सारी चीज़ें इनबिल्ट थी। तो ये एक चैत्य के विकास की यात्रा है, अंदर अंदर ये डेवलप होता है, ये हमारा ट्रू सेल्फ है, ट्रू बीइंग है। और माने कहा है, इट इज़ द डिविनिटी नियरेस्ट टू अस। सबसे आसान अगर किसी चीज़ को पाना है तो वह है चैत्य सत्ता। लेकिन चैत्य सत्ता पाने के लिए योग नहीं किया जाता है, भगवान को पाने के लिए जब हम मुड़ते हैं तो चैत्य अपने आप जागता है। आप बुलाते हो मामा मामा, बच्चा, श्री रामकृष्ण कहते थे ये कि गाय जाएगी तो बछड़ा पीछे पीछे आएगा। तो वैसे ही जब हम भगवान को खोजते हैं अंदर या कहीं भी, या सत्य को खोजते हैं, तो चैत्य अपने आप जागता है। सेकुलर अप्रोच है सत्य की खोज, लेकिन वो सत्य की खोज में कोई पूर्वाग्रह, कोई पूर्वधारणा नहीं होनी चाहिए। वैज्ञानिक रूप से भी अगर हम जा रहे हैं तो फिर हमको कहीं रुकना नहीं चाहिए कि जड़ जगत इज द लास्ट लिमिट। तो किसी भी रूप में जब हम अल्टीमेट गुड की खोज करते हैं, अल्टीमेट सौंदर्य की खोज करते हैं, आप किसी भी मार्ग से जाइए, तो धीरे 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 चैत्य का विकास होता है, वो सामने आने लगता है, डेवलप करता है। और डायरेक्ट खोज है ईश्वरीय प्रेम, भगवान से प्रेम, क्योंकि ये हमारे भावनात्मक केंद्र के बिल्कुल पीछे है। तो अगर हम भावनाओं के द्वार से अगर चैत्य के पोर जाते हैं तो बहुत शीघ्रता से पहुँचते हैं। मन के द्वार से भी हम जा सकते हैं, लेकिन मन के द्वार से सत्य की खोज, ब्रह्म की खोज, ईश्वर की खोज, तो मन तो फिर एक लंबे रोड से ले जाता है। मन का तो तरीका है कि वो स्टेप से चढ़ता हुआ, घुमावदार सीढ़ियों से चढ़ता हुआ माता वैष्णो देवी के मंदिर ले जा रहा है, और जो हृदय का द्वार है वो तो एक अलग डायमेंशन से जाता है, वो आपको एक छोटा सा हेलीकॉप्टर है, आप बैठ के वहाँ पहुँच जाते हो दर्शन कर लेते हो। दोनों जरूरी हैं, क्योंकि जब हम घुमावदार सीढ़ियों से जाते हैं तो हम वहाँ एंजॉय कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से केवल जाते हैं, और अगर ये हमारे अंदर सक्षम नहीं है तो हेलीकॉप्टर से हम दर्शन तो कर लेंगे, लैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम वहाँ पर सांस नहीं ले सकेंगे। तो दोनों के विकास की जरूरत है, मन के विकास की, हृदय की भी, शरीर की भी, प्राण की भी। और ऐसे हम चैत्य को, और माने तरीका भी बताया कि वो मेथड तभी काम करता है, कोई भी मेथड, अगर अंदर में सच्चाई है। ये मेथड मेथड के रूप में काम नहीं करता है कि अगर हम रोज हृदय पर कंसंट्रेट करें तो भगवान मिल जाएंगे, एक्सक्यूज मी, वो केवल कोई मैकेनिकल मेथड के गुलाम नहीं है। तो जब हम ये कि भगवान, हम एक्चुअली, अगर हम मेथड को छोड़ दीजिए, अगर आप अपने अंदर सोचें कि मुझे आई वॉन्ट टू फाइंड डिवाइन, आप देखिए आपका ध्यान कहाँ जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली योर कॉन्सेंट्रेशन विल बी इन द हार्ट। आप प्रयास कीजिए कि भगवान कहाँ है, नासिकाग्र में आप प्रयास कीजिए, भ्रूमध्य में भी कठिनाई, भ्रूमध्य में जाता है कब भगवान की खोज में, लेकिन हृदय के अंदर बहुत स्वाभाविक रूप से, पेट के पास नहीं जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा, वो अपने आप एज इफ वो हमको ड्रॉ कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो हृदय के अंदर ध्यान को एकाग्र करना, ध्यान का मतलब चेतना को एकाग्र करना, चेतना को एकाग्र करने का मतलब वो हजार चीज़ों में जो वो लगी लिपटी है वहाँ से उसको खींचना। क्यों लगी लिपटी है? अटैचमेंट के कारण। तो इसीलिए निष्काम कर्म ये सब जो प्रोसेस हैं ये आवश्यक है, क्योंकि अगर हम केवल ध्यान करेंगे बिना निष्काम कर्म बिना डिटैचमेंट प्रैक्टिस किए तो बहुत कठिन होगा। तो वो सब तैयारी होती है, फिर जब आदमी जब ये सब करके वो सब चीज़ों के बीच में लेकिन बंधा नहीं है, वैसे आसक्त होके नहीं बंधा है, तो वो जब बैठ करके हृदय में कंसंट्रेट करते हैं भगवान को खोजते हुए, उनकी किसी छवि का या नाम का सहारा लेके, नाम तो बहुत बड़ा फाउंडेशन है इटर्निटी का, तो जब हम नाम और छवि दोनों का सहारा लेके माँ 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 जब खोजते हैं तो धीरे धीरे भगवान, और भगवान कैसे प्रकट होते हैं, पहले चैत्य उसके पीछे वो जैसे गोद में लिए हुए हैं, तो वो जो अप्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष होने लगते हैं। और किसके आँखों से प्रत्यक्ष होंगे? केवल चैत्य की आँखों से। केवल बीज का जो सबसे अंतरंग भाग है वही महसूस करता है अपने अंदर के प्रेशर को, बाहर की क्रश नहीं महसूस करती है। इवन इनर बीइंग इनडायरेक्टली फील करता है। तो जितना हम चैत्य में जागेंगे उतना अधिक हम अपने अंदर और संसार में ईश्वर को देखेंगे, खोजेंगे, पाएंगे। इससे एक अंतिम चीज जोड़ दो, आज का एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया था। क्या कमेंट आया था? कि सनातन धर्म को नष्ट करना है। मूर्ख मूर्ख आत्म तत्व को नष्ट कर सकता है, ये प्रयास दुर्योधन ने किया था, और दुर्योधन सपरिवार समूल विनाश हो गया। क्यों? बाय डेफिनेशन आप आत्म तत्व को नष्ट नहीं कर सकते, वो इमॉर्टल है। और अगर आपने बाहर से एक, मैं एक एक्सट्रीम एग्जांपल ले रहा हूं कि बाहर से आपने सारे मनुष्यों को नष्ट कर दिया तो भी सनातन धर्म प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो इमॉर्टल सब्सटेंस है। जैसे आपने एक वृक्ष को काट डाला लेकिन उसका बीज अगर जीवित है तो वो फिर से वृक्ष बन जाएगा। तो सनातन धर्म का जो आधार है, उसकी बाद में कभी टॉक करेंगे, वो अविनाशी आत्म तत्व है, उसका विनाश संभव नहीं है। और जिसने भी ये प्रयास किया था, दुर्योधन से लेकर स्टालिन और मुसोलिनी तक वो अभी कहाँ है ये तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन सनातन धर्म जिस पर इतने आक्रमण हुए वो प्रॉस्पर कर रहा है। क्यों? वो अविनाशी तत्व पे आधारित है। ब्रह्म का विनाश नहीं हो सकता, आत्म तत्व का विनाश नहीं हो सकता, और सनातन सत्य का अल्टीमेट सत्य का विनाश नहीं हो सकता। जय मां।